ओम शांति। आदिवासियों के एक बस्ती में एक बार एक ईसाई पादरी आता है और उसका लक्ष्य होता है सबको ईसाई बना देना। तो वो पादरी सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है। वो सभी अनपढ़ गवार सभ्य लोगों से दूर रहने वाले वो सारे आदिवासी। तो वो ईसाई पादरी दो मूर्तियां लेकर आता है। एक मूर्ति होती है राम जी की और दूसरी मूर्ति होती है जीसस की। वो एक बकेट रखता है जिसमें पानी भरता है और वो ये सिद्ध करने आता है कि कैसे ईसा मसीह श्री राम जी से बड़े हैं। और वो कहता है कि हम ये दोनों मूर्तियों को जो दिखने में एक सरी की है इस पानी में डालेंगे। जो तैरेगा इसका मतलब वो बड़ा, और जो डूब जाएगा इसका मतलब जो खुद ही डूबने वाला है वो दूसरों को कैसे बचाएगा। तो वो ईसाई पादरी उन आदिवासियों के बस्ती में उस बकेट में दोनों मूर्तियों को डालता है। और जो राम जी की मूर्ति होती है वो लोहे की बनी होती है और जो जीसस की मूर्ति होती है वो लकड़ी की। तो जैसे ही वो पादरी उन दोनों मूर्तियों को डालता है तो राम जी तो डूब जाते हैं और जीसस तैरने लगते हैं। तो वो सभी गांव वालों को समझाता है, देखो देखो तुम्हारा राम खुद ही डूब गया तो दूसरों को कैसे बचाएगा, और देखो ये जीसस तैर रहा है, तारक वही है, आ जाओ। तो सारे गांव वाले एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम भी कैसे पागल थे, किसकी पूजा कर रहे थे अब तक। तो वो ईसाई पादरी से कहते हैं कि हम सब ईसाई बनने को तैयार हैं। तो उसी गांव में एक शिकारी आता है और वो ये बात सुनता है कि ऐसे ऐसे हुआ है और उसे समझ में आ जाती है पूरी बात। तो वो फिर से सभी गांव वालों को एकत्र करता है। वो ईसाई पादरी से कहता है कि हमारे हिंदू धर्म में जल परीक्षा नहीं अग्नि परीक्षा होती है, जल परीक्षा का कहीं पर भी कोई गायन नहीं है, गायन किसका है अग्नि परीक्षा का। तो एक बार फिर से परीक्षा की जाए और इस बार दोनों मूर्तियों को आग में डाला जाए, जो बच जाएगा वो बड़ा। तो वो घबराता है, भागने को करता है, परंतु गांव वाले उसको पकड़ते हैं, रुको तुम्हें रुकना पड़ेगा। और फिर आग जलाई जाती है, ऊपर से दोनों मूर्तियां तो एक जैसी है। तो जैसे ही आग में जलते हैं तो जीसस तो जल के भस्म हो जाते हैं और राम जी बिल्कुल खड़े। मूर्ति पूजा ये एक ऐसी बात है कि विश्व में बहुत सारे धर्मों में मूर्ति पूजा की जाती है। क्यों की जाती है, कैसे की जाती है उन्हें पता नहीं, परंतु मान्यता जरूर है। यहां तक कि वो सारे धर्म भी जो पहले पहले मूर्ति पूजा के विरोध में थे, आइडोलेट्री के विरोध में थे, बाद में वो भी मूर्ति पूजक हो गए। तो कहानी तो बहुत रोचक थी, परंतु ऐसा ही होता आया है। चाहे हिंदू धर्म चाहे बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो। महात्मा बुद्ध ने कहा किसी की भी शरण में नहीं जाओ। उनके शिष्यों ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। उन्होंने कहा मेरी मूर्ति कभी ना बनाना। सबसे ज्यादा मूर्ति अगर आज किसी की है संसार में तो महात्मा बुद्ध की है। यहां तक कि बुद्ध शब्द जो है वो बुद्ध से आया है। बुद्ध, बुद्ध अर्थात बुद्ध पूजा। बुद्ध शब्द भी जो मिडल ईस्ट में मूर्तियां मिली वो बुद्ध की मूर्तियां थी। वहां पर एक बुद्ध का मंदिर है जहां पर 1000 मूर्तियां एक ही मंदिर में महात्मा बुद्ध की। तो बुद्ध ने कहा था कि मेरी मूर्तियां मत बनाना, सबसे ज्यादा मूर्तियां उन्हीं की है। उन्होंने कहा था मेरी पूजा बिल्कुल मत करना, उनकी भारत में कम, भारत से बाहर बहुत ज्यादा पूजा है। संडे की अव्यक्त वाणी में जो दूसरा भाग है पार्टियों से मुलाकात वाला, उसमें बाबा ने कहा है तुम बहुत वैल्यूबल हो, तुम्हारी मूर्ति की भी कितनी वैल्यू है, चाहे पत्थर की, सोने की, चांदी की या कोई भी लेन देन मूर्ति की होती है, तुम वो दिव्य मूर्ति हो जिसकी आज तक लोग पूजा कर रहे हैं। दिव्य दर्शनीय मूर्त, मुरली में चाहे साकार या अव्यक्त दो शब्द हमेशा आते हैं, एक स्वरूप एक मूर्त। हर चीज के पीछे बाबा ने ये दो शब्द जोड़े हैं, स्वरूप और मूर्त, या कभी कभी धारी, ये तीसरा, सेवा धारी, धारणा मूर्त, प्रेम स्वरूप। कभी स्वरूप जोड़ा है, कभी धारी जोड़ा है, तो कभी मूर्त जोड़ा है, एम्बॉडीमेंट या फिर इमेज, प्रतीक, छवि, आइकॉन। तो सभी धर्मों में ये समझा है कि उस निराकार की साधना बहुत कठिन है। इसलिए क्या चाहिए, कोई सामने कुछ तो चाहिए जिस पे ध्यान लगाया सके, जिसको देखे। उसमें भगवान नहीं है, परंतु वो प्रतीक है, वो चिन्ह है, वो सिंबल है उसका। और इसके लिए द्वापर से बहुत विस्तार जो भक्ति का हुआ उसमें बीच में मूर्ति पूजा आई, प्रतीकात्मक। इब्राहिमिक रिलीजन जो है तीन, इब्राहिम जो आया था सबसे ज्यादा उसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और वो तीनों ही तीन धर्म का पिता है इब्राहिम। इंग्लिश में कहते हैं इब्राहिम, हिंदी में कहते हैं अब्राहम, उर्दू में कहते इब्राहिम। तीन धर्मों का पिता है। हम अपने कोर्स किताब में दिखाते हैं उसने कौन सा धर्म स्थापन किया, इस्लाम, और मोहम्मद के लिए दिखाते उसने कौन सा धर्म स्थापन किया, तो क्या इस्लाम और मुस्लिम अलग अलग है? क्या बताते हैं, सब लोग कोर्स कराते हैं ना, तो क्या बताते हो? अगर कोई पूछ ले इस्लाम को फॉलो करने वाले को मुस्लिम कहा जा सकता है, फिर ये कहां से बता रहे हो आप कि इब्राहिम आया और उसने इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर क्राइस्ट आया, फिर मोहम्मद आया, फिर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म स्थापन किया। क्या मुस्लिम धर्म कोई है? कोई इस्लाम वाला सुन लेगा तो ऑब्जेक्शन लेगा, तो क्या कहेंगे? कल्प वृक्ष में कुछ कुछ चित्र है, शायद ज्ञान सरोवर में कहीं एक जगह एक चित्र है जिसमें एक्यूरेट दिखाया है। वास्तव में इब्राहिम तीन धर्मों का पिता है, एक यहूदी धर्म, दूसरा क्रिश्चियन धर्म और तीसरा इस्लाम धर्म। जो इब्राहिम की कहानी है और जगदीश भाई जी ने भी कहीं कहीं सुनाई है, उसके दो बेटे और एक बेटे के वंश में इस्लाम, इस्माइल और इसहाक, एक के वंश में जीजस आता है और दूसरे के वंश में मोहम्मद का जन्म है, बीच में मोजेस है, मूसा। तो वो इन तीनों धर्मों को इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है और इन तीनों ही धर्मों में मूर्ति पूजा का बिल्कुल विरोध है शुरुआत में जब चालू हुए थे, क्योंकि इब्राहिम ने जा जाकर सब जगह पर जितनी मूर्तियां थी सबको नष्ट कर दिया था। परंतु धीरे 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 धर्म जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, धर्मों में भी डिवीजन होते गए, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स, शिया, सुन्नी और उसमें फिर सूफी, और फिर धीरे 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 विस्तार होते गया। तो चाहे शुरुआत में वो सारे धर्म जो केवल निराकार की पूजा करते थे, बाद में वो धर्म भी मूर्ति पूजक हो गए। तो बाबा ने कल की अव्यक्त वाणी में कहा कि तुम्हारी जड़ मूर्तियों की अब तक पूजा हो रही है और उन मूर्तियों की बहुत वैल्यू है, चाहे कैसी भी वो मूर्ति, पर मूर्ति की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मानते हैं लोग उसको, चरणों में गिरते हैं। आज सुबह जब हम अमृत वेला कर रहे थे तो एक संकल्प आया कि हमारे पांचों ही जो स्वरूप है वो मौन स्वरूप है। जब हम परम धाम में बिंदु हैं तब भी हम संपूर्ण मौन है, जब हम देव है, देवी है, तब हमारी वाणी दिव्य है, परंतु उसमें मौन का समावेश जरूर होगा, क्योंकि देवताएं बहुत नहीं बोलते, कम बोलते हैं। द्वापर से जो मूर्तियां हैं वो सभी मूर्तियां मौन हैं, कोई मूर्ति बोलती नहीं, पर उसके चरणों में सब गिरते हैं। सोचो अगर कोई मूर्ति कंटिन्यूअस बोल रही हो तो शायद भक्तों की श्रद्धा कम हो जाएगी। मूर्ति तो कभी कभी बोलती है और जब वो बोलती है तब वो महावाक्य होते हैं, वरदान होते हैं, आशीर्वाद होता है। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त पूज्य स्वरूप हमारा जो है वो मौन है, और ब्राह्मण स्वरूप में भी, ब्राह्मण स्वरूप में भी कुछ दिन पहले वरदान में था। ये हंसी मजाक अच्छी करते हैं परंतु बोलते बहुत है, वरदान था ना, एक समझाते अच्छे हैं, हंसी मजाक भी करते परंतु बोलते बहुत है। ब्राह्मण में भी मौन स्वरूप श्रेष्ठ स्वरूप है, और पांचवा स्वरूप वो तो है ही मौन, फरिश्ता, चुपचाप जाते हैं फरिश्ते और काम करके आते हैं। फिर से हिंदू धर्म में देवदूत है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये तीन इस तरफ, या सिख, परंतु उधर के जो तीन धर्म है वो देवदूतों को नहीं मानते, वहां पर क्या है, एंजल्स। एंजल्स क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा चार्ट है, क्लासिफिकेशन है एंजल्स का, एक एक एंजल के कर्तव्य है, ये एंजल ये करेगा, वो एंजल ये करेगा, माइकल ये करेगा, इतने सारे नाम है, एंजलोलॉजी, स्टडी ऑफ एंजल्स एक ब्रांच है अलग से। तो उसमें ढेर सारे एंजल्स बताए हुए हैं, क्या क्या करते हैं वो, उनके अलग अलग कर्तव्य। ये तीन धर्म जो है वो एंजल्स को मानने वाले हैं, और इन तीन धर्म की आत्माओं को हम ब्राह्मण आत्माओं से फरिश्तों का साक्षात्कार होगा और फिर वो ज्ञान में आएंगे। एंजल्स दिखेंगे उनको। तो कल की अव्यक्त वाणी सबने सुनी थी, सुनी होगी, पहला भाग तो कल हो गया उधर पांडव भवन में, आज हम दूसरा भाग है छोटा सा, तो उसमें भी लगभग 8 बातें हैं। कल जन्माष्टमी थी तो जन्माष्टमी की मुरली से 8 बातें वहां देखी थी। पार्टियों से जो मुलाकात है लंदन, यूके ग्रुप और मॉरिशस ग्रुप, उसमें भी 8 बातें। सबसे पहली बात, विदेश के महारथी भाई बहनों से बाबा मिल रहे हैं और बाबा ने कहा एक बहुत ही जबरदस्त वाक्य है उसमें। पहली पॉइंट है निमित्त। निमित्त बनने की विशेषता निमित्त बनाती है। कभी सुना ऐसा वाक्य? निमित्त बनने की विशेषता क्या करती है? निमित्त बनाती है। तो निमित्त बनने के लिए क्या चाहिए? निमित्त बनने की विशेषता। निमित्त बनने की विशेषता निमित्त बनाती है। इस यज्ञ में सबसे ऊंची धारणा है निमित्त भाव, कि कहीं ये ना लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में जब भी जो भी साधक जाएगा उसे प्रसिद्धि मिलेगी, सिद्धियां मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पर ये सिद्धियां ही कभी कभी बाधक हो जाती है। इसलिए ये भाव कि मैं निमित्त हूं, मुझे इस कार्य के लिए चुना गया है, वो चाहता तो किसी और को भी चुन सकता था और मेरे से योग्य बहुत सारे हैं थे, फिर भी मुझे चुना गया। इसके लिए निरंतर एक विनम्रता का, निरंतर एक धन्यवाद का, अहोभाव का भाव निरंतर हो कि हमें उसने चुना है और मैं इस कार्य के लिए निमित्त हूं। और जब जब अहम भाव आएगा, मैं कर रहा हूं ये भाव आएगा, तब तब पतन होगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक घटना का वर्णन है। जब बहुत लेक्चर्स दे चुके, 2 बार विदेश जाकर आ गए, अब मौन खींचने लगा और ये प्रसिद्धि और ये सब से जैसे वैराग होने लगा, सोचा अब मुझे अकेले कहीं जाना है, कोई साथी नहीं हो, और वो उधर वैष्णो देवी की यात्रा को जाते हैं शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले। और जब वो दर्शन करके नीचे उतर रहे होते हैं तो एक गांव में आते हैं और गांव में देखते एक काली का मंदिर है और वो काली का मंदिर खंडहर बन चुका है। वो देखते हैं यहां पर तो कोई नहीं आता है, पूछते हैं लोगों से इसकी दशा किसने की, तो उनको बताते हैं मुसलमानों ने। क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे होते हुए इस काली के मंदिर को वो ऐसा कैसे कर सकते थे, अगर मैं होता तो उनका डट कर सामना करता। फिर घर जाते हैं और घर जाते हैं सोते हैं कहीं पर, घर मतलब गांव में कहीं, तो थोड़ा मन में रहम भर जाता है और सोचते हैं ठीक है, उन्होंने तोड़ दिया ना, मैं कल अभी भीख मांगूंगा, चंदा जमा करूंगा और फिर से निर्माण करूंगा। वो क्रोध थोड़ा शांत हो जाता है। दूसरे दिन जाते हैं तो जमा करने लगते हैं, इस मंदिर का मैं पुनर्निर्माण करूंगा। फिर से रात में सोते हैं तो उनके स्वप्न में काली आती है और वो कहती है, डू यू प्रोटेक्ट मी और आई प्रोटेक्ट यू। वो कहते हैं अगर मैं होता ना तो बिल्कुल उनको इस मंदिर को हाथ नहीं लगाने देता, देखूंगा कैसे काली, मेरी काली मां को कोई हाथ भी लगाता है, मैं रक्षा करता। तो वो रात में स्वप्न में आती है, क्या कहती है, क्या तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी रक्षा करती हूं। अगर मैं चाहती तो वो क्या मेरा मंदिर तोड़ते? उन्होंने मेरा मंदिर तोड़ा, ये भी मेरी ही इच्छा थी। तुम कौन हो मुझे मेरी रक्षा करने वाले? और जैसे ही उनको स्वप्न दिखता है, वो जो अहम था, वो जो अहंकार था, एकदम से लीन होता है। अब आगे का जो जीवन है संपूर्ण समर्पण, सरेंडर, कुछ भी नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। उसकी इच्छा होगी तो होगा, जाय विधि राखी राम ताई विधि रहिए थाई विल शैल बी डन। मैं कौन हूं कुछ करने वाला? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूं, मैंने वैसा किया। इन द अल्टीमेट एनालिसिस, जो कुछ भी हुआ या किया गया, ये उसकी प्लानिंग थी। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण महाभारत में है। महाभारत का युद्ध पूरा हो जाता है, सब तरफ रक्तपात, सब मर चुके हैं, केवल 5 पांडव जिंदा है। कुंती रो रही है, इतना रोती है, इतना रोती है, क्या मिला इस युद्ध से? सब मर गए, अपने पराए, कौन अपने और कौन पराए? वो भी तो अपने ही थे जो मर गए, क्या वो अपने नहीं थे? क्या फायदा हुआ? हे गोविंद, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, पर तुमने रोका नहीं। और वो रोए चली जाती है, रोए चली जाती है। वो कहता है रोना बंद करो, अगर तुम कहो तो अभी फिर से सबको जिंदा कर देता हूं। वो कहती है अब रहने दो, क्योंकि यदि तुम जिंदा कर सकते हो इसका मतलब ये सब तुम्हारी इच्छा से हुआ है। जिसमें इतना सामर्थ्य है कि जो जिंदा कर दे, तो हुआ भी तुम्हारी इच्छा से। होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। क्यों तर्क कर रहे हो? ये ऐसा ही क्यों हुआ, ये वैसा ही क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए था, मेरा ये ठीक नहीं था, मेरा ये ठीक होना चाहिए था। जो हुआ और जैसा हुआ वही सत्य है। ड्रामा सत्य है, हर सीन सत्य है, जो हुआ वही होना चाहिए था। निर्वेर भाई साहब ने एक क्लास में कहा था, बाबा के पास 1 डजन ड्रामा आए थे। डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट आती है ना, तो बाबा ने इस स्क्रिप्ट को चुना, ये सबसे बेस्ट है, बाकी वो को छोड़ दिया। इसके लिए तुम ये नहीं कह सकते कि ये ड्रामा ठीक नहीं है, बहुत सारे आए थे, उसमें से इस ड्रामा को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि इसको पूरी जांच पड़ताल की कि एक एक सीन बेस्ट है। ब्लॉक बस्टर ये मूवी जो है ना, ये एकदम रिलीज हो गई तो एकदम हिट हो जाएगी, तो इसको उसने सिलेक्ट किया है। ड्रामा बाप को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए। बाप को ड्रामा का हर एक्टर पसंद है तो तुम्हें भी होना चाहिए। बाप को ड्रामा के हर एक्टर की हर एक्शन पसंद है तो तुम्हें भी होना चाहिए। वो साक्षी का सागर है, भगवान साक्षी का सागर है, भगवान मौन का सागर है, भगवान धैर्य का सागर है, भगवान अनासक्ति का सागर है, रहम का सागर है, अनासक्त है, कुछ भी उसे स्पर्श नहीं करता, यहां कुछ भी होने दो, वो डिटैच्ड है, इसलिए उसे ड्रामा प्रिय है। हम ड्रामा के अंदर है, ट्यूब्यूलर विजन है, संकीर्ण दृष्टि है, अपने अपना सोचते हैं ये ठीक नहीं था मेरे लिए, परंतु वो डिटैच्ड है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा। कर्म को प्रधान कर रख दिया है उसने, परंतु वो स्वयं निर्लिप्त है, अलिप्त है। तो जैसे वो है वैसे हम जब बनेंगे तब ड्रामा कैसा लगेगा? प्रिय लगेगा, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, पसंद आएगा। नहीं तो दोष, ये सीन अच्छी नहीं है, वो सीन अच्छी है, आज का ये सीन अच्छी नहीं थी, उस दिन की अच्छी थी, इस ड्रामा में से ये 2 एक्टर बिल्कुल ठीक नहीं है, इनको निकाल दिया जाए, खेल हो रहा है। लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है, ये रावण अगर मिल जाए तो देखता हूं इसको। परंतु थोड़ी देर के बाद पर्दे के पीछे दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, क्योंकि खेल कर रहे हैं, यहां खेल हो रहा है। परंतु उतना ज्यादा डिटैचमेंट चाहिए इस ड्रामा से, स्वयं से, स्वयं के पार्ट से, हर बात से, तो ही यह ड्रामा एंजॉय किया जा सकता है। जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इसमें डूब गया है, जो प्रेक्षक नहीं, दर्शक नहीं, अभिनेता बन गया है केवल, उसके लिए सीन्स बहुत दुखदाई है। परंतु जो अभिनेता है पर साथ साथ दर्शक भी है, दूर भी बैठा हुआ देखता है कि ये देखो मैं खेल कर रहा हूं, वो सेफ है। तो सबसे पहली बात है निमित्त। निमित्त बनने की विशेषता क्या बना देगी? निमित्त बना देगी। अर्थात विशेषताओं की लिस्ट में यह भी एक विशेषता है, निमित्त। क्या ये मैंने धारण की है? ये विशेषता निमित्त बनाएगी। ये विशेषता आ गई तो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए निमित्त बनेगी आत्मा। दोनों ही निमित्त शब्द के दो अलग अलग अर्थ। एक है निमित्त भाव, ये आ गया तो तुम्हें निमित्त बनाया जाएगा, चुना जाएगा तुम्हें। सेवाएं हैं 10 प्रकार की और 10 लोग हैं। निमित्त भाव की विशेषता जिसने धारण की उसको चुना जाएगा और नई सेवाओं के लिए निमित्त बनाया जाएगा, जो उसे भी नहीं पता चलेगा कि मैं निमित्त बन गया। उसे भी बाद में पता चलेगा कि मैं निमित्त बना। एक अंग्रेजी लेखक फ्रांसिस बेकन ने एक जगह लिखा है, आई वोक अप वन डे एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। मुझे पता ही नहीं चला, मैं एक दिन जागा तो पता चला मैं बहुत प्रसिद्ध हो चुका हूं। आई वोक अप वन डे एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। तो निमित्त बनने की विशेषता क्या कर देगी? निमित्त बना देगी। ये सबसे पहली बात। दूसरी, ब्रह्मा बाप को नाज किस पर है? बच्चों पर। ये उत्तर नहीं दो। सच्चे दिल पर पूरे हफ्ते भर की मुरली नहीं, कल की मुरली चल रही है, अव्यक्त वाणी। साल भर के उत्तर नहीं देने हैं। यूनिटी। बच्चे एक दूसरों से विचार मिलाते हैं, इस पर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त है फिर भी अव्यक्त वतन से देखते हैं, तो बाबा को नाज आता है, नाज होता है बच्चों पर। यज्ञ का फाउंडेशन है यूनिटी, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है यूनिटी। आज सुबह की साकार मुरली, झाड़ झाड़ की काठी, वन वन की काठी मुरलियों में आता है। आज झाड़ झाड़ की बोला, यहां पर वन वन की काठी आई है। कोई यहां से, कोई वहां से, कोई वहां से, कोई वहां से, परंतु यूनिटी है। किसी को एक ही कमरे में 10 माताएं, एक को खिड़की खुली चाहिए, एक को बंद, 10 माताएं और उस कमरे में 10 लोगों के साथ रहना मासी का काम, घर नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या है ब्राह्मण जीवन की, 20 माताओं के साथ एक नई माता रहे, ये उसके लिए साधना है। उसके पूरे ज्ञान और योग की टेस्ट है, वो एसिड टेस्ट, लिटमस टेस्ट है। एक को लाइट चालू, एक को बंद, एक को खिड़की चालू, एक को खिड़की बंद, एक आता है तो चप्पल लगा के जाता है और हम उठ जाते हैं, एक फोन पर ही बात करता है। कितनी बड़ी साधना है। संस्कार मिलन की रास करो। यूनिटी। चाहे वन वन की काठी, भिन्न भिन्न संस्कार की आत्माएं, अभी है ऐसी संस्कार की आत्माएं, फिर कहां मिलेंगे? अपने आप से बात करनी है। अच्छा है इतने अच्छे अच्छे संस्कार है, सतयुग में तो सब धुलाई होकर निकलेंगे, फिर थोड़ी ना मिलेंगे। आत्माएं वही रहेगी परंतु पूर्ण साफ व्हाइट वॉश होकर निकलेगी। एक प्रश्न आप सबको दे रहे हैं कि आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, कि आत्मा का पार्ट सतयुग में देवताएं हैं, ठीक है, और द्वापर से पाप करना चालू कर देते हैं, तो जब वो आत्मा परमधाम में है तो क्या उसमें सभी संस्कार वहां पर भी है? मर्ज इमर्ज शब्द थोड़ा बाहर रख दो। हमारा प्रश्न है आत्मा में, बाबा ने कहा सारी रिकॉर्डिंग है, 10 तारीख जनवरी मास 1990 सुबह 8 बजे क्या कर रहे हैं, हिप्नोटिक रिग्रेशन अगर किया जाए तो वो भी पता चलेगा, चाय में शक्कर कम थी या ज्यादा थी वो भी बता देंगे व्यक्ति उस दिन। तो ये आत्मा में कुछ भी घिसता नहीं है, तो पाप जो किए और पाप की जो स्मृतियां है क्या वो भस्म हो जाएगी? भस्म कुछ होता है? सोचना इसके विषय। यदि परमधाम में पूर्णपन आत्मा संपूर्ण पवित्र होकर परमधाम जाती है तो जब नीचे उतरती है तो फिर वो अपवित्रता के संस्कार कहां से आए? द्वापर से। ये एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, रावण की प्रवेशता कब से है? 100% मोबाइल चार्ज किया और उसको यूज करना चालू किया तो कब से डिस्चार्ज होना चालू हुआ? दो प्रश्नों के ऊपर सोचना कि रावण की प्रवेशता, रावण अर्थात कोई व्यक्ति नहीं है, विकार छोड़ो देहभान, देहभान क्या देवताओं में देहभान है? नहीं है तो शादी क्यों करते हैं? पार्ट मर्ज इमर्ज ये शब्दों से थोड़ा बाहर निकलो, सोचना। तो यूनिटी, चाहे कैसे भी हो परंतु हम में यूनिटी हो, संगठन में यूनिटी हो, यूनिटी में बल है। हमारे द्वारा ऐसा कुछ ना हो जिससे यज्ञ की क्लानी हो, निंदा हो। हमारे द्वारा ऐसा कुछ ना हो कि कोई हमारी कोई एक चलन को देखकर सुबह की मुरली रावण कुमार बन जाए। नया शब्द प्रयोग किया है सुबह की मुरली में, रावण कुमार, शूद्र कुमार या रावण कुमार, ब्रह्मा कुमार से रावण कुमार ना बन जाए। ये भी ऐसा करते हैं। एक परिवार नया नया ज्ञान में आया था और पहली बार बाबा से मिलने मधुबन आए। अब तक घर में जब भोजन करते थे मौन में करते थे, क्योंकि मुरलियों में था या सुना था बहनों से। मधुबन में आए, देखा ये देखो भाई लोग तो खाना खाते खाते बहुत बातें करते, तो उन्होंने भी अपना मौन तोड़ दिया और नई धारणा ली, बातें करते 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 खाना खाना। अच्छी है धारणा? क्यों क्यों अच्छी नहीं है? भोजन मौन और एकांत में होना चाहिए। एकांत अर्थात अपनी थाली कहीं और लेके जाके बैठना नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो म्या भक्त्या प्रेष्यति, अनन्य भाव से जो मुझे स्वीकार कराता है प्रेम से, पत्र हो पुष्प हो फल हो मैं उसे स्वीकार करता हूं। प्रेम कितना है, एकाग्रता कितनी है, मौन कितना है, प्रसन्नता कितनी है, धन्यवाद का भाव कितना है, वो करते करते, या फिर केवल स्वाद के दीवाने हैं और उसी की चर्चा है। तो एक यूनिटी फाउंडेशन है, हम निमित्त न बने इस किले को तोड़ने के, हम ईंट है एक एक इस किले की, और इस किले के अंदर जो रहता है वो सुरक्षित है, किले के बाहर जाते ही माया आक्रमण करेगी। उसके बाद में तीसरी बात, रूहानी गुलाब। कौन हो तुम? अविनाशी बगीचे के रूहानी गुलाब हो, अर्थात रूहानी खुशबू फैलाने वाले हो। कई बार हमने ये सुना है, तुम रूहानी गुलाब हो, रूहानी गुलाब हो। कौन सी खुशबू, कौन सी खुशबू? कल की ही मुरली से, कल की ही मुरली से अव्यक्त वाणी जो मेन मुरली चली थी उसमें एक बात आई थी, गुणों का दान करो। यदि कोई अवगुण वाला आ जाए तो क्या करो? उसके अवगुण को धारण ना करके क्या करो? गुणों का दान करो। गुण क्या है? गहने। अवगुण वाला दिखे तो अपना गहना निकालकर उसके गले में डाल देना, तो हमारा कम हो जाएगा, दो हो जाएंगे। ज्वेलरी कहा था कल बाबा ने, हर स्थिति हर स्थान पर सजाओ स्वयं को इस गहने से। तो रूहानी खुशबू फैलाना अर्थात प्यूरिटी की खुशबू फैलाना, हमारी प्यूरिटी देखकर दूसरों को इच्छा हो कि हमें भी ऐसा पवित्र बनना है। हमने उन्हें कुछ कहा नहीं, मुख से कुछ ज्ञान दिया नहीं, ना ही मन से शक्तियों की किरणें दी, परंतु कर्मों द्वारा गुणों का दान, गुणदान। कोई बहुत डिस्टर्ब है बाबा के कमरे में आता है और हम वहां बैठे हैं, हमें तो पता भी नहीं वो आया, पर हमारी लगन में मगन अवस्था देखकर ही उसे लगे कि मैं भी ऐसा कब याद करूं, तो ये दान हो गया ना। किसी को रोज अमृत वेला नींद आती है और रोज हमको देखता है कि ये भाई ये बहन कैसे तटस्थ होकर अपलख बैठते हैं बाबा की याद में। हमने उसे कहा भी नहीं, पर उसने हमको देखा और रोज देखता है, दान दे दिया ना। ऐसा दान, अपनी धारणाओं से दान देना है, बिना कहे निर्वाक दान, निर्वाण दान, बेआवाज दान, द साउंडलेस डोनेशन। तो ये थी तीसरी बात। चौथी बताई, जहां से हमने क्लास की शुरुआत की थी, कितने वैल्यूबल हो तुम, तुम्हारी जड़ मूर्तियों की भी पूजा होती है। अगला, वाह वाह का गीत। वाह वाह का गीत, कौन सा गीत गाते रहो? वाह वाह का गीत। वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता, वाह ड्रामा, वाह संगम युग, चारों चीजों के लिए वाह वाह के गीत गाते रहो। इतना बड़ा भाग्य हमें मिला है तो निरंतर ये गीत गाते रहे। जो गीत हम गाते हैं कल की ही मुरली में, जो गीत वो गाता है वो गीता बनती है, और जो गीत हम गाते हैं वो भागवत। वाह वाह जीवन हो, क्या ऐसा है? बाबा है या हाय हाय है? यहां आते तो वाह वाह और घर जाते हैं तो हाय हाय। मधुबन के लिए कहा जाता है, मधुबन सतयुग है, ज्ञान सरोवर त्रेता युग, शांतिवन द्वापर युग, और उसके बाद कलयुग वहां से चालू हो जाता है। आबू रोड स्टेशन तक सब कुछ है, इतना नशा चढ़ा हुआ है, ऐसा पुरुषार्थ करूंगा करूंगी कि बस अब पूरा कोहराम मचा दूंगा, पूरा दुनिया में ऐसी मशाल जला दूंगा कि बात मत पूछो। ऐसी तपस्या करेंगे मधुबन से, ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करके जाते हैं लोग, और जैसे ही शांतिवन और फिर वहां से निकलते हैं और आबू रोड स्टेशन और ट्रेन में बैठते हैं, फिर उधर के काम याद आने लगते हैं, फिर संसार, फिर गृहस्थी, फिर बच्चे और पैसा और धन सब याद आते आते पहुंचते हैं, और 10 दिन तक नशा रहता है, अच्छा और 10 दिन तक, और फिर क्लास, फिर फिर वहां से हाय हाय चालू हो जाता है। यहां की प्रतिज्ञा कहां खो जाती है पता ही नहीं चलता है। यहां तक थे तो यहां की दिनचर्या, वहां गए तो वहां की दिनचर्या चालू, वहां से जब यहां आते हैं तो एक दिन यहां की दिनचर्या में सेट होने को लगता है, एक दिन में सेट हो जाते हैं ब्राह्मण, और फिर तुरंत अमृत वेले से शक्तिशाली पावरफुल अमृत वेला, और तुरंत सेट हो जाते हैं। यहां से वहां जाते हैं, कुछ समय यहां की दिनचर्या वहां चलती है और फिर वहां की दिनचर्या चालू हो जाती है, नींद वाली, आलस वाली, अलबेलेपन वाली, व्यर्थ वाली, निगेटिव वाली, एक रस अवस्था, कंसिस्टेंसी स्पिरिचुअल पुरुषार्थ में, जो ये कर दे उसका जीवन सफल। एकदम डोलना नहीं है पेंडुलम की तरह, एकदम उधर तो एकदम उधर। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जिन्होंने कहा बस अब बाबा ही सब कुछ है, बस अब जा रहे और स्वाहा आने के बाद, और यहां से गए और आए ही नहीं कभी, उधर ही स्वाहा हो गए। प्रतिज्ञा करके गए यहां पर कि बस अब जा रहे हैं, और वहां गए और चतुर्भुज बन गए। तो कौन सी बात बता रहे थे हम? बाबा के गीत, बाबा के गीत निरंतर गाते रहे। परंतु ये बाबा के गीत गाने के लिए उतना तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, व्यर्थ में संपूर्ण अरुचि, नो इंटरेस्ट। यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमें लेना देना है पुरुषार्थ से, बस दैट्स इट। कंप्लीट लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन दी वर्थलेस एक्टिविटीज ऑफ द वर्ल्ड, तब कहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट ओके, यूके अर्थात ओके। ओके के तीन अर्थ बताए। पहला बैलेंस, पढ़ाई और सेवा में बैलेंस। दूसरा अनुभव, अनुभव करो। किस चीज का अनुभव करो? अमित भाई, विष्णु भाई, पप्पू भाई, किस चीज का अनुभव करो? पहला बताया बैलेंस, ओके अर्थात बैलेंस रखने वाले, पढ़ाई में भी और सेवाओं में। सेवा में इतना ना खो जाए कि पढ़ाई छूट जाए, पढ़ाई केवल करते रहो और सेवा ही ना हो, यह भी नहीं चाहिए, दोनों चाहिए। और दूसरा क्या बताया? अनुभव। किसका अनुभव? हाथ और साथ, जहां हम जा रहे हैं वो साथ साथ चल रहा है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ अनंत शक्तियां काम कर रही है, मेरे साथ ईश्वरीय शक्तियां है। इसके लिए तुम साधारण नहीं हो, कार्य जरूर साधारण है परंतु स्थिति असाधारण हो। बोल तुम रहे हो परंतु बोल में ईश्वरीय शक्तियां समाई हुई है। तीसरा सेफ्टी, माया जीत, माया विदाई लेकर चली जाएगी, ओके की ये परिभाषा है। दादी जानकी ने कभी किसी से पूछा था कैसे हो, उसने कहा ठीक हूं। दादी ने कहा ठीक हूं की परिभाषा जानते हो? ठीक हूं अर्थात बाप समान, वो पीछे हट गया। ठीक की परिभाषा अर्थात बाप समान, इतना आसान नहीं है ठीक हूं। ओके, बाबा ने कभी कहा था मुरली में लंबा चौड़ा लेटर मत लिखो, एक ही शब्द लिखो बस, ओके। ओ और के, ओ अर्थात जीरो, के अर्थात किंगडम, बाप और वर्षा, दो को याद करो बस, बाप और वर्षा। एक काम दे रहे हैं आप सबको, जितने देश है उन सब देशों के लिए बाबा ने एक एक शब्द कहा है, जैसे इंदौर इंडोर, तो इसकी लिस्ट आपको बनानी है। पहले तो भारत के सारे स्टेट्स की लिस्ट बनाओ और सारे विश्व भर के लिए क्या क्या कहा, एक एक विशेषता, ब्राजील के लिए क्या कहा, महाराष्ट्र महान राष्ट्र, राजस्थान राजा दैवी राजस्थान, कर्नाटक नाटक पूरा हुआ, ऐसी लिस्ट बनानी है सबको, ठीक है। गुजर गई रात गुजरात, तो ऐसे कुछ ना कुछ तो कहा है राइमिंग के साथ, तो नहीं भी कहा तो बनाओ क्या कहेगा फ्यूचर में उसकी बना के रखो। तो ओके ओके स्थिति अर्थात जिसमें बैलेंस है, जिसमें अनुभव हो रहे हैं और जिसमें क्या है सेफ्टी है, सेफ माया से सेफ, माया जीत, माया वार नहीं कहेगी, माया विदाई ले ले। तो ये यूके ग्रुप से चार बातें कही, फिर मॉरिशस ग्रुप था उसमें दो बातें कही, भाग्य विदाता भगवान, कौन मिल गया तुमको भाग्य विदा, भाग्य बनाने वाला जो भाग्य विदाता है वही मिल गया। इस समय भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, किसको तुमने अपने वश कर रखा है, भगवान को, जिसे कोई बांध नहीं सकता उसको तुमने अपने स्नेह की डोर से बांधा है। वो तो भागते रहता है, नटखट तेरा लाल यशोदा, नटखट तेरा लाल भागता है इधर उधर उधर उधर, पर यशोदा ने आखिर बांध दिया उसको, अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा। तुम बच्चों ने बाप को अपने स्नेह की डोर से बांधा है, तो बताओ बांधने वाला बड़ा है या बंधने वाला बड़ा है, प्रश्न पूछा है कभी बाबा ने, बताओ कौन बड़ा है, जो बंध गया वो बड़ा या बांध दिया जिसने वो बड़े। तो तुम बड़े हो, वंदे मातरम। तो अपने भाग्य को भूलना नहीं है। महान अंतर कल भी कहा बाबा ने, वो कहते हैं कैसे, तुम कहते हो ऐसे, वो कहते हैं कैसे अर्थात प्रश्न, क्वेश्चन मार्क, तुम कहते हो ऐसे अर्थात फुल स्टॉप। महान अंतर को भूलना नहीं है, महान अंतर है। वो कहते हैं ओ माय गॉड, तुम क्या कहते हो, क्या कहते हो, ओहो ओ बाबा नहीं, क्या कहते हो, ओहो ओहो बेटे बाबा, गॉड नहीं, गॉड उनका है क्योंकि गॉड हमारा बाप है। कितना अच्छा वाक्य है, इस समय गॉड कौन है, हमारा बाप। एक विदेश की माता ट्रेन से फ्लाइट से उतर रही थी, उसको वहां के लोगों ने पूछा व्हाट डू यू डू, उसने कहा वी हेल्प गॉड, हम भगवान की मदद करते हैं, दुनिया भगवान से मदद मांगता है और ये लोग क्या करते हैं, वी हेल्प गॉड, भगवान के मददगार बनो, आज कहा ना प्यूरिटी। तो भाग्य को भूलना नहीं, भाग्य को याद करना, ये सातवीं बात। और आठवीं बात लास्ट, कुमारी अर्थात निर्बंधन, तन से भी और मन से भी। तन से तो निर्बंधन है परंतु मन निर्बंधन हो, कल की क्लास में शायद पता नहीं कितने लोग थे, हमने जन्माष्टमी की आठ बातें बताई थी। जैसे ही भगवान प्रवेश हुए वो काल कोठरी कंस की क्या हो गई, प्रकाशित हो गई। ये पहला रहस्य है जन्माष्टमी का, भगवान जहां आएंगे वहां पर प्रकाश हो जाएगा। दूसरा, जो बेड़िया थी वसुदेव के हाथों में टूट गई, वो परंपराओं की बेड़िया सारी टूट गई। तीसरा, जो ताले थे संस्कारों के बंदीगर ग्रह में वो खुल गए। चौथा, जो सिपाही थे पहरेदार थे विकारों के वो सारे सो गए। पांचवा, जैसे वो बाहर निकलते हैं वो सूप एक टोकरा मिल जाता है, जो भगवान को साथ लेकर निकलता है उसे जरूर कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है, मांगनी नहीं पड़ती, स्वतः मदद आ जाती है। और फिर यमुना नदी से निकल पड़ते हैं, ऊपर से परिस्थितियों की बारिश होती है, तो शेषनाग छत्र छाया, और फिर वो यमुना भी उफान पर है, बहुत तेज ऊपर ऊपर उठ रही है जीवन रूपी यमुना। तो भगवान जैसे ही पैर लगाते हैं वो शांत हो जाती है, वो बच्चे को वहां रखते वापस आते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, अब भगवान नहीं है। तो योग माया प्रकट होती है, कहती है हे वसुदेव तुम सब भूल जाओगे, विस्मृति, फिर से बेड़िया लग गई, फिर से अंधकार हो गया, फिर से दरवाजे बंद हो गए और फिर से पहरेदार जाग गए। ये आठ बातें हैं अष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की। तो वैसे ही आज हमने ये आठ बातें बताई। तो कुमारी अर्थात कोई बंधन नहीं, बंधन स्वीकार नहीं है मुझको, ये संकल्प रखना मुझे, किसी भी व्यक्ति का बंधन स्वीकार नहीं, नो इमोशनल बॉन्डेज, कोई मुझे बांध नहीं सकता अपनी सूक्ष्म अदृश्य आसक्ति के बंधनों में। जो आत्मा भगवान से बंध गई है वो और किसी के बंधन में बंधने को राजी नहीं हो सकती, किसी व्यक्ति के बंधन में बंधने को राजी नहीं। I do not accept any bondage. I reject all bondages. सभी bondages को मैं reject करती हूँ। तो ऐसी ये आठ बातें थी, फिर से एक बार revise करेंगे। सबसे पहला निमित्त, निमित्त बनने की विशेषता निमित्त बनाएगी। दूसरा यज्ञ का foundation है unity। तीसरा मैं रूहानी गुलाब हूँ, अविनाशी बगीचे में तो मुझे खुशबू फैलानी है, बदबू नहीं फैलानी, पहली बात। और जो अगर बदबू फैला रहे और वायुमंडल में यदि बदबू है तो ये मेरा परम कर्तव्य है कि इस वायुमंडल को मुझे सुगंधित करना है अपने सौरभ से। अगला वैल्यूएबल मूर्ति हूं मैं, मौन। मूर्ति की एक विशेषता याद रखना, मूर्ति मौन है, वाचाल नहीं हो सकती मूर्ति, उसका मौन ही उसकी शक्ति है। अगला वाह वाह के गीत गाते रहना निरंतर। अगला ओके, बाबा मैं ओके हूं, इतना रोज बाबा को एक बार बोल देना, सुबह एक बार बोलना, रात को एक बार बोलना कि आई एम ओके, दैट्स इट। ओके अर्थात उसकी याद है और किंगडम की याद है, दोनों चीजें हैं, बाप और वर्षा, वर्षा और बाप। अगला भगवान मिल गया, मेरे जैसा भाग्यशाली संसार में और कोई नहीं। यदि कोई हाथ उठाने के लिए कहे कि उठाओ हाथ, कौन कौन भाग्यशाली है, तो सबसे ऊंचा हाथ मेरा उठेगा। भगवान पूछे अरे तुम कौन हो, सबसे ऊंचा हाथ तुम्हारा दिख रहा है, यू कम, इधर आ जाओ, खुद ही वो कहे। और पूछे बोलो तुमको क्या मिला, और हम कहेंगे कि तुम। जैसे एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय आता है, ऑफिसर पूछता है जो उसका इंटरव्यू लेता है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो कहता है जब तक मैं अपने आप को इस सीट में नहीं देख लेता तब तक मैं रुकूंगा ही तुम जहां बैठे हो जब तक मैं आपको इस सीट पर नहीं देख लेता तब तक मैं रुकूंगा नहीं, ये मेरा टारगेट है, लक्ष्य है ये ऑफिस ज्वाइन करने का। तो अगला है निर्बंधन। तो ऐसी आठ बातें। ओम शांति।